अब इसके बाद वो आयत है जो इस लेसन का थीम था। मैंने आपको एक लफ्ज़ बोला था, गलबे इस्लाम। उन सारी बातों को जो शुरू में सामने रखी, इसको सामने रखते हुए इस आयत को ज़रा सा समझने की कोशिश करते हैं। युरीदूना, वो इरादा चाहते हैं। कौन? जिनका ऊपर जिक्र हुआ है, तीनों गिरोह, अहले किताब भी और मुशरिकीन भी। क्या चाहते हैं? अय युतफियु नूर अल्लाह बि अफवाहिहिम, कि अल्लाह के नूर को अपने मुंह से बुझा दें। ये जो युतफी हुए ना, ये ताफा हमजा इसका रूट है। ताफा हमजा क्या होता है? तफियतिन नार, आग के शोले के बैठने को कहते हैं। यानी वन तफा तो आग सर्द हो गई, अतफा उसने आग को बुझा दिया। इसी तरह से फूक मार के आग बुझाने के लिए यह लफ्ज आता है। इस तारा है असल में, यहाँ असल में तो आग नहीं लगी हुई। यहाँ नूर अल्लाह से क्या मुराद है? इस्लाम, अल्लाह की किताब। यानी ये लोग इस तरह की गलत बातें क्यों करते हैं? ताकि अल्लाह का दीन इस्लाम मिट जाए। और अफवाहिहिम फासे, मुंह, अफवाह का लफ्ज़ सुना, वो भी ये मुंह से बात निकलती आगे जाती है। अल्लाह कहते हैं इनके इरादे नहीं कामयाब होंगे। वयाबल्लाहु इल्ला युतिम्मा नूरहू, और अल्लाह को हर किस मंजूर नहीं मगर ये कि वो अपने नूर का इतमाम करे, दीन इस्लाम को नुमाया करे, पूरा करे। वलो करिहल काफिरून, अगरचे ये बात कुफार को नागवार हो। तंज है असल में आयतों में इन अहले किताब पर, जो खुफिया साजिशों से इस्लाम को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। कभी अलल ऐलान मैदान में आकर मुकाबले की जुरत करते नहीं, पीछे बैठकर पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश करते हैं। और आज इस एक आयत को सिर्फ इस्लाम पे नहीं, इस्लाम के रिचुअल्स पे लीजिए। कैसी फूके हैं, निकाब उड़ जाए, सूद हलाल हो जाए, दाढ़ी ख़त्म हो जाए, और बैन कर दो इस सिकाब को और निकाब को और हिजाब को। हर देख लीजिए तीर और तलवार का रुख किसी इस्लामी हुक्म पे ही है। टेररिज्म इस्लाम के साथ, कभी आपने किसी दूसरे मज़हब, मतलब बुद्ध मत है फलां मत, उस मज़हब के बारे में मीडिया से कुछ सुना? और कल की फूके मुंह की थी, शोरा थे, कसीदे थे उनके, उनके रमजिया अशआर थे। आज की फूके मीडिया है, एक खबर छपती है पूरी दुनिया में फैलती है। इसी पे मौलाना जफर अली खान ने कहा था ना कि नूरे खुदा है कुफर की हरकत पे खंदाजन। खंदाजन कहते हैं मुस्कुरा रहा है, यानी अल्लाह का नूर जो है वो काफरों की हरकत पे हंस रहा है कि फूकों से ये चिराग बुझाया ना जाएगा। कौन? देखिए आप इमेजिन कीजिए, ये शम्मा है, ये मेरे हाथ में एक शम्मा है, आप दूर हैं मैं पास हूँ, मेरे हाथ में है ना, ये जल रही है। अब इस शम्मा के नाते से आप देखिए तीन गिरोह ज़हन में लाइए। नंबर एक, जो इसको बुझाना चाहते हैं, बस आप में से आधे लोग चाहते हैं कि ये कैंडल बुझ जाए, आधे लोग हैं वो इसको बचाना चाहते हैं, और एक तीसरा हिस्सा वो कुछ भी नहीं करते। जो कुछ नहीं कर रहे वो किसका साथ दे रहे हैं, बोलिए? बुझाने वालों का। आज मुसलमानों का भी यही हाल है। आज के दौर में इस्लाम ये है, कुफार कौन है बुझाना चाहते हैं? जो बचाना चाहते हैं वो दीन के वो रहनुमा जो वाकई असल दीन जो आज से 1400 साल पहले से चल रहा है उसको लेकर चल रहे हैं, दिफा कर रहे हैं, हाफिज हैं वो अल्लाह के दीन के। और जो आज हम खामोश मुसलमान बैठे हैं वो किसके फिर मददगार हैं? हम कुफार के, कि तुम बजा लो हम नहीं कुछ कहते तुम्हें। और आखिरी बात देखिए कि ये मेरे हाथ में, मैं इसको बुझा सकती हूँ क्या? आपको तो बहुत बड़ी बड़ी फूक है, क्या कोई ब्लो पंप लाने पड़ेंगे इसको बुझाने के लिए? मैं इसको एक फूक से बुझाती हूँ तो आज भी इस्लाम को सबसे ज़्यादा ख़तरा मुनाफिक मुसलमान से। कुफार आपके इस्लाम का कुछ नहीं बिगाड़ सकते जब तक आप खुद इसको बचाने वाले हैं। अल्लाह ताला कहते हैं हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिल हुदा, वो है जिसने भेजा अपने रसूल को हिदायत के साथ। यहाँ अल हुदा का लफ्ज़ है, बा को लग कर देना पीछे अल हुदा, अल हुदा के अल कुरान व सुन्ना, हिदायत कुरान और सुन्नत के मुताबिक। दूसरी चीज़ व दीन अल हक, सच्चा दीन। दो चीज़ें मिली थी नबी को, अभी देख लेते हैं क्या है। क्यों भेजा? लियुज़हिरा हु अला दीनि कुल्लिही, ताकि इस दीन हक को गालिब कर दे सारे अदियान पे। वलव करिहल मुशरिकून, अगरचे ये बात मुशरिकों को बड़ी ही नापसंद हो, अच्छी ना लगे। बहुत वाज तौर पे इस सबक का थीम बयान हो रहा है इस आयत में। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की इम्तियाजी शान क्या है कि इस दीन की तकमील हो। اللہ کے نبی کی رسالت کا بنیادی مقصد دوسرے انبیاء کی طرح تبشیر بھی تھا، بشارت دیتے تھے، نذیر بھی تھے، انذار تھا، ڈراتے بھی تھے، تذکیر بھی تھی، دلوں کو نرم کرتے تھے، دعوت بھی تھی اور تبلیغ بھی تھی۔ سورۃ نساء کی آیت 165 میں یہ سارے اشارے ملتے ہیں کہ رسلم مبشرین و منذرین لیلّا یکون للناس علی اللہ حجت بعد الرسل، لیکن یاد رکھیے اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ایک خاص، ایک امتیازی وصف اور مقصد تھا، اور وہ کیا؟ تکمیل رسالت، یعنی دین کو بالفعل قائم اور غالب کرنا، امپلیمنٹ کرنا۔ پہلے نبیوں نے تھیوری دے دی دین کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پریکٹیکلی بھی کر کے دکھایا، آپ کے بعد آپ کے صحابہ کی زندگی میں یہ دین غالب ہوا، پوری اسلامی سزائیں بھی نافذ ہوئیں، اسلامی قواعد بھی لگے۔ تو ان دو آیات میں نبی کی رسالت کی تکمیلی شان کا ذکر ہے۔ اور یاد رکھیے کہ یہ آیت سورۃ صف 8 اور 9 میں بھی آئے گی اور سورۃ فتح میں بھی آئے گی، فرق ہے تھوڑا سا بس۔ یریدون لیطفی نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اگلی آیت بالکل ایسے ہی ہے۔ فرق کیا ہے کہ کہیں لو کرہ الکافرون ہے، کہیں لو کرہ المشرکون ہے؟ کیا پتہ چلا کہ اللہ کے نبی کا مقصد بعثت کیا تھا؟ اسلام کو غالب کرنا۔ وہ مکھن علی مثال یاد رکھیے گا۔ آج میں اور آپ اگر یہ دین نہیں لوگوں تک لا رہے تو یاد رکھیے یہ ہمارا انسانیت پہ بھی ظلم ہے اور خود پہ تو ہے۔ اور یہ بھی ایک بات بتا دوں کہ دین پورا نافذ ہوتا ہے تو خوبصورت ہوتا ہے، آسان ہوتا ہے، ادخلوا فی السلم کافا الدین یسر، لیکن جب دین ادھورا ہوتا ہے نا تو پھر آج کے حالات پیدا ہوتے ہیں۔ یہاں سے قرآن میں جو باتیں پڑھ کے جاتے ہیں ایسے لگتا ہے کہ ایک ہوا بھر گئی ایمان کی، لیکن گھر جا کے ذرا سی کوشش کی اس کو اپلائی کرنے کی تو جھاگ کی طرح بٹھا دیں گے، زبردستی آپ کو لے کے جائیں گے ایسی محفلوں میں جہاں ایک ایک قانون ٹوٹتا ہے۔ آج ادھورا دین ہے اس لیے مشکل ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں دین پہ عمل کرنا مشکل ہے، یہ ہے وہ ہے، کیونکہ دین ہے ہی کوئی نہیں۔ آپ اس کو دنیا کی 10 مثالوں سے سمجھ لیں، کھانا پکائیں پورے پروٹوکول سے صحیح طریقے سے پکائیں مزے کا ہوگا، آدھا پکائیں گوشت ڈال دیں، وہ نہ ڈالیں، یہ کر دیں، کچا رکھ دیں، پکا کر دیں، وہ گوشت آپ کے دانت کاٹ دے گا۔ میرا آپ کا کام کیا ہونا چاہیے؟ اس دین کی دنیا میں وہ خوبصورتی دکھائیں کہ جو اس کی اصل میں تھی، ادروائز اس کے بغیر نہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر اس کام کی رکاوٹ، تو اگلی آیت میں نام تو یہود اور نصارہ کے مذہبی رہنماؤں کا ہے، لیکن مجھے تو ایسے لگتا ہے یہ امت مسلمہ کے علماء اور داعی دین اور جو دین کو دنیا میں پریزنٹ کرتے ہیں ان کو اشارہ دیا جا رہا ہے کہ کیوں اتنا جو پیارا دین ہمارے پاس ہے تو پھر آج کیوں نہیں ہے؟ تو کہا کہ جیسے ماضی کے مذاہب کے دینداروں میں دینداری دکانداری بن گئی، وہ دین کو بیچتے تھے۔ دیکھیے جوتوں کی دکان پہ کیا بکتے ہیں؟ جوتے۔ کپڑوں کی دکان پہ کیا بکتا ہے؟ کپڑے۔ تو دین کی دکان پہ کیا بکے گا؟ دین بکتا ہے۔ جب دیندار عالم دین بیچ لیں سستا لوگوں کی خوشی کے لیے، آج کے حالات تو وہ کیا ہوتا ہے؟ پھر دین آپ کا نہیں رہتا، جو چیز آپ بیچ دیں وہ آپ کے پاس رہے گی۔ اصل میں آج ہم نے اسلام بیچ دیا ہوا ہے نان مسلم یہود نصارہ کرسچنز کے ہاتھوں میں۔ اب اپنی مرضی کا اسلام چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ری انٹرپریٹ کرو اسلام کو، قرآن نیا لکھو، سورۃ توبہ کہتے ہیں نکال دو۔ یہ آج ریفرنسز موجود ہیں کہ دنیا میں اب یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ یہ سورۃ توبہ نکالو قرآن سے، کیونکہ اس میں قاتلو کا لفظ بہت ہے، جنگوں کی باتیں بہت ہیں۔ دیکھیں نا، آپ نے یہ گلاس بیچ دیا، میں نے آپ سے خرید لیا، ابھی تو یہ سفید ہے، میں گھر لے گئی، میرا دل کیا اس پہ پھول بناؤں، میں اس میں جا کے پینٹ سے پھول بنا دوں گی، میرا دل کرتا ہے کہ اس سارے کو پنک کر دوں، میں اس پہ پنک کلر کر دوں، میں اس کو توڑ دوں، میں اس کو جوڑ دوں، میری مرضی ہے۔ آج ہم مسلمانوں کے کان کھولنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت ہم آدھے دین پہ عمل کر کے دین کو بیچتے ہیں۔ آپ دیکھیے اس میں کردار کیا آتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان کثیر من الاحبار والرهبان لا یاکلون اموال الناس بالباطل، اہل ایمان یقیناً بہت سے علماء اور درویش ہڑپ کرتے ہیں لوگوں کے مال باطل طریقے سے۔ یاد رکھیے کسی بھی دور میں انسانوں میں زوال کب آتا ہے؟ جب مذہبی طبقہ دنیا دار بن جاتا ہے مال کی محبت میں۔ مسلمان امتوں میں مذہبی پیشواؤں کے لیے مختلف نام اور القاب رائج ہیں۔ بنی اسرائیل کے دور میں ان کو احبار اور رحمان کہا جاتا تھا، جیسے آج مشائخ ہیں، مفتی صاحب ہیں، شیخ صاحب ہیں، تو तो इसी तरह से रुहबान और अहबार का लफ्ज़ आप देखिए बार बार इस सबक में आ रहा है। अब हुआ क्या कि इस तबके में अक्सरियत ऐसे लोगों की थी जो बातिल और नाजायज़ राय से माल खाते थे, जमा करते। अब माल कैसे खाएंगे दीन के नाम पे? फतवे बिकते थे, सहूलतें लेते थे, आपके हक में फैसला देंगे, जो चाहे चेंज करवा लीजिए। आम दुनियादार जायज़ तरीके से माल दौलत कमाता है या जायदाद बनाता है, कोई हर्ज नहीं है। मगर याद रखिए, बड़ा बड़ा लिख लें दिल पे, अगर आप वाकई दीन के नाम पे कुछ कर रहे हैं, एक ऐसा शख्स जो दीन की खिदमत में मसरूफ़ है, इसी हकीकत से जाना पहचाना जाता है, लोग कहते हैं ये मजहबी लोग हैं, अगर वो भी माल व दौलत जमा करने और जायदादें बनाने में मशगूल हो जाए और मजीद ये कि इसमें दीन को इस्तेमाल करे और अपनी दीनी हैसियत को बेचे, तो लोगों के माल खाने के मुतरादिफ है। माल और दौलत जमा करना अपनी ज़िंदगी का मकसद बना ले, याद रखिए इस आसमान की छत के नीचे वो बदतरीन इंसान होगा। और अल्लाह के नबी ने अपनी उम्मत के उलमा के बारे में यही बात कह दी थी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो की रिवायत से ये बात पहुँचती हैं। आपने फरमाया, यूशिकु अय्याति अलन्नासि ज़मानुन ला यबका मिनल इस्लामी ला इस्मुहु। अल्लाह अकबर, कितनी सच्ची बात आज के दौर में लगती है। आपने फरमाया कि अली, एक ऐसा वक्त आएगा लोगों पर, यानी मुझे अंदेशा है कि लोगों पर एक वक्त आएगा कि जब इस्लाम में से इसके नाम के सिवा कुछ नहीं बचेगा। है ऐसे कि नहीं? खोखला ढांचा नहीं है इस्लाम, अंदर वो दीन ही नहीं है। वला यबका मिनल कुरान इल्ला रस्मुहु, और कुरान में से कुछ ना बचेगा मगर उसकी रस्म। आज रस्मी तौर पे नहीं पढ़ते कुरान, हनी आज पढ़ लें, आज इस आले सवाब पे पढ़ लें, आज दौरे कुरान के नाम पे पढ़ लें, रस्म, रस्मी रस्मी नाम। मसाजिद हम आमिरतुन वही खराब मिनल हुदा, फरमाया मस्जिदें आबाद होंगी, शानदार होंगी, मगर हिदायत से खाली होंगी। ये मैं नहीं कह रही, ये अल्लाह के नबी के अल्फाज हैं। और उलमा हम शर्रु मन तहत अदीम समाई मिन इंदिहिम तखरुजुल फितनतु वफीहिम तऊदू, फरमाया कि इनके आलिम उलमा आसमान की छत के नीचे बदतरीन मखलूक होंगे, फितना इन्हीं में से निकलेगा और फिर इन्हीं में लौट जाएगा। आज फितने मस्जिदों से उठते हैं, हम दीनदारों की जगहों से लोग फितनों की बातें सुन के जाते हैं, आम पब्लिक तो बड़ी मज़े से दुनिया एंजॉय कर रही है। फरमाया वयसुद्दून अन सबीलिल्लाह, और वो रोकते हैं अल्लाह के रास्ते से। जब कोई अल्लाह का बंदा उठता है, कोई ऐसी तहरीक उठती है, अल्लाह का मुखलिस बंदा, कोई गिरोह लोगों को कहता है लोगों अल्लाह की तरफ चलो, तो इन मजहबी पेशवाओं को फिर अपनी मसनदें खतरे में नज़र आती हैं। वो नहीं चाहते कि इनके अकीदतमंद इन्हें छोड़कर किसी दूसरी दावत की तरफ मुतवज्जे हों, क्योंकि इन्हीं अकीदतमंदों के नजरानों से तो इनकी दौलत के अंबार लगते हैं, इनकी जायदादें बनती हैं, तो वो कैसे चाहेंगे कि हमारी दावत पर दूसरे आ जाएं। हाल के वल्लज़ी न यकनज़ू न ज़हब वल फिद्दा, वो लोग जो जमा करते हैं सोना और चांदी, वला युनफिकून हाफी सबीलिल्लाह, और उसको खर्च ही नहीं करते अल्लाह के रस्तों में। फबशिर हम भी अजाब नलीम, इनको दर्दनाक अजाब की वईद सुना दो। तारीख गवाह है कि सबसे ज़्यादा माल दो लोगों से बरामद होता था। ये यहूद अंसारा की हिस्ट्री पढ़े, दो नामों पे एक्सप्लॉयटेशन हुआ इंसानियत का, नंबर एक सियासत के नाम पे और दूसरा मज़हब के नाम पे। सियासी हुक्मरान और जब मज़हब वाले हुक्मरान मिल जाते थे ना, फिर तो कह लीजिए कि वो दीन की जड़ें कटती हैं। आप हिस्ट्री पढ़िए, चर्चिस के नीचे से मटकों में सोना बरामद होता था। कुटियाएं बना के राहब बनकर जंगलों में रहते थे इनके दरवेश, लेकिन जब वो मरे या किसी वजह से वो गिराई गई तो वहाँ से सोने की देगें निकली, अल्लाह ने उसका तस्करा किया। और उसके बाद इस आयत में ये भी आ जाता है कि हर वो माल जिस पे ज़कात नहीं दी जाती वो कंज है। अबू ज़र गफ़ारी की राय इसी आयत पर थी, कहते थे सोना चांदी रखना हराम है अपने पास, हालांकि हराम नहीं है, पसंदीदा भी नहीं है। अल्लाह के नबी ने 3 दफ़ा कहा सोने में हलाकत है, सोने में हलाकत है। साहबा डर गए कि अल्लाह के नबी क्या मतलब ना रखें, लेकिन मुराद क्या था कि अगर ज़कात नहीं देते या वैसे सोना चांदी के ऊपर माल खर्च करना ये पसंदीदा नहीं है। तो याद रखिए इस एक आयत के बारे में, ये हदीस भी आती है कि वो माल जिस पे ज़कात नहीं दी जाती, क़यामत के दिन उस माल की तख्तियाँ बनाकर दागी जाएंगी। ये जो है ना फतुकवा बिहा, तो मिकवा कहते हैं इस्त्री को, किसी धात को आग में तपाना और उसके बाद फिर उसको किसी के साथ लगाना, मेरा ले जिस्म की खाल तक कट जाती है, इतनी तकलीफ देर बात है ये। और आपको था कि हज़रत अबू ज़र गफ़ारी के राय इतनी सख्त हुई थी कि हज़रत उस्मान के दौर में फिर ये मदीना से बाहर चले गए थे, सहरा में झोंपड़ी बनाकर रहने लगे, कहने लगे ये सब नहीं रख सकता। लेकिन ये शायद का असल रुख जो है ना मजहबी तबके की तरफ है, वो लोग जिन्होंने अपना वक्त और सलाहियतें दीन की खिदमत के लिए वक्फ की हैं, उनका कोई ज़रिया आमदनी नहीं है। अगर ऐसे मजहबी पेशवाओं को लोग हदीये देते हैं, उनकी माली मदद करते हैं ताकि वह ज़रूरियात पूरी करें, नबी सल्लम का दौर था तो बैतुल माल से ऐसे लोगों की ज़रूरियात पूरी होती थी, हत्ता कि आपके बाद अज़वाज मुतहरात को नान नफका दिया जाता था, अपने अजीज़ व अकारब के साथ हुस्न सलूक करते थे। लेकिन जब बैतुल माल में कुछ नहीं होता था तो फाके भी हुए, कई कई दिन दो दो महीने तक चूल्हा नहीं जला। खुलफाए राशिदीन को देखिए, थे खलीफा और घर में रोटी नहीं होती थी। इसीलिए आज भी हर मजहबी रहनुमा पे ये लाजिम है कि अपनी ज़ात की तरफ मोड़ने की बजाय लोगों को अल्लाह के दीन की तरफ मोड़ दें। आपको कोई देते हैं ना, आप कहते हैं स्कूल को दे दें, मुझे नहीं चाहिए आपसे कुछ, इसलिए कि ये वो चीज़ें हैं कि जो इंसान के लिए फिर बहुत मुश्किल इम्तिहान बन जाता है। फरमाया यौम युहमा अलैहि फी नारी जहन्नम फतुकवा बिहा, फिर जिस दिन इन सोने और चांदी को तपाया जाएगा जहन्नम की आग में, और फिर दागा जाएगा इनसे किसको, जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम, इनकी पेशानी और इनके पहलुओं और इनकी पीठों को। ये क्यों, ज़रा सा देखिए एक एक चीज़। जिबाह क्या पेशानी, कहते हैं इज्जत का मसला है, चेहरा इज्जत की पहचान होती है, जुनूब आसाइशें लग्जरियस लाइफ, और ज़हूर पुश्त दीन को पीछे डाल कर इन चीज़ों में पड़े। फरमाया हा जमा कनस तुम लिया अनफुसिकुम फजू कुमा कुन तुम तकनीजून, कहा जाएगा ये है जो तुमने अपने लिए किए था, अब चखो मज़ा इनका जो तुम करते हो, अपने लिए सोच लो। देखिए ये सरासर तनकीद है मजहबी तबके पे, माली खयानतें।